हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 11वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 11 श्लोक 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कारः यत्र अविच्छिन्नः सः द्विजः अजः जगाद् यम् इज्ज्या अध्ययन् दानानि विहितानि द्विजन्मना जन्म कर्मा वदाताना क्रिया आश्रम चोदितः संस्कारा यत्र विच्छिन्नः स्वद्विजोजो जगादयम् इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम् जन्म कर्मावदातानाम् क्रियाश्चाश्रम चोदितः संस्कारा यत्र विच्छिन्नः स्वद्विजोजो जगादयम् इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम् जन्म कर्मावदातानाम् क्रिया चाश्रम चोदितः संस्कारा यत्र विच्छिन्नः स्वद्विजोजो जगादयम् इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम् जन्म कर्मावदातानाम् क्रिया चाश्रम चोदितः
Bye.
माता जी संस्कारः संस्कार शुद्धिकरण की विधियां यत्र जिसमें अविच्छिन्नः बिना किसी क्रम भंग के सह ऐसा व्यक्ति द्विजः दो बार जन्म अजः ब्रह्मा ने जगाद विधान किया यम जो इज्ज्या पूजा अध्ययन वेदाध्ययन दानानी तथा दान विहितानी बताए गए द्विजन्मना द्विजों का जन्म जन्म से कर्म तथा कर्म से अवदाता नाम विमल पवित्र क्रिया कार्यकलाप च भी आश्रम चोदिता चारों आश्रमों के लिए संस्तुत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो लोग अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा द्वारा दी जा चुकी है वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें तथा दान दें। इस पद्धति में उन्हें आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य के आचरण संबंधी 30 सामान्य गुणों की सूची प्रस्तुत करने के बाद अब नारद मुनि 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को उपर्युक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य भी नहीं है। फिर ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों में वर्णाश्रम पद्धति का शुभारंभ करना चाहिए। वर्णाश्रम पद्धति में पहला गर्भाधान संस्कार है जो मैथुन के समय अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों द्वारा निष्पादित किया जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए नहीं अपितु संस्कार के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए संभोग करता है वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। मनुष्य को वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करके केवल इंद्रिय सुख के लिए वीर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, परंतु संभोग में संयत तब ही संभव है जब जनता को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षित किया जाए, अन्यथा यह संभव नहीं है। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म भी ले किंतु यदि वह संस्कारों का पालन न करे तो वह द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनके संतानें वर्ण संकर कहलाती हैं, और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ जाती है तो सारे विश्व की स्थिति नारकीय बन जाती है। अतएव सारा वैदिक वाङ्मय वर्ण संकर जनता उत्पन्न करने के विरुद्ध सावधान करता है। वर्ण संकर जनता होने पर लोगों की शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी ही बड़ी विधानसभाएं, संसद या अन्य संस्थाएं क्यों न हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सप्तम स्कंध पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंध। श्रीमद् भागवतम में अनेक विषय हैं लेकिन मुख्य रूप से 10 विषय। सातवें स्कंध में किस विषय को प्रस्तुत किया गया है? आए उत्ति। 10 विषय है, मैं लिस्ट पढ़ूंगा, अर्थ करूंगा तो फिर इधर ही अटक जाऊंगा। एक विषय है उत्ति। उत्ति का क्या अर्थ होता है? उत्तय कर्म वासना प्रोक्त। जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, इच्छा है, और उसी को उत्ति कहते हैं। भाई वासना का उदय कहाँ होता है? हृदय में। वासना का उदय होता है हृदय में, लेकिन इसका कंट्रोल दो जगह है। एक तो हमारे हाथ में भी है और पूरा पूरा हमारे हाथ में ही नहीं है। तो उति को कर्म वासना, वासना को उति कहते हैं। और वासना भी दो प्रकार का है, शुभ अशुभ, शुभा शुभा च, शुभ अशुभ और च। श्रीधर स्वामी च को है, इसको आगे के आचार्य लोग श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं च मतलब मिश्र, शुभ अशुभ और मिश्र। तो तीन प्रकार की वासना का विभाजन किया गया, कौन कौन? शुभ अशुभ और मिश्र। और श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध में कितने अध्याय हैं? 15। और विषय क्या है? उत्ति। और उत्ति का भेद कितना हो गया? 3। तब अध्याय को भी 3 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना एक के लिए पड़ेगा? 5-5। तो 5 अशुभ वासना के लिए और 5 शुभ और 5 मिश्र। गणित समझ में आ रहा है ना? प्रारंभ के अध्यायों में हिरण्यकश्यपु के वासना को दिखाया गया है, हिरण्यकश्यपु के मन में क्या इच्छा हो रही थी कि जितने वेद का अध्ययन करने वाले हैं या यज्ञ करने वाले हैं उनको तंग किया जाए, उनको नष्ट किया जाए। वो सीधे अपने अनुयायियों को आदेश दिया, यहीं से प्रारंभ होता है। और जो संसार की व्यवस्था है उसको वह पलट देना चाहता था। जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, वो कह रहे हैं कि आप तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग बतला रहे हैं कि वो आपके नियम को बदलना चाहता है, इसलिए आपके पद को लेना चाहता है। अरे जानते हैं तो आप लोगों को बतलाने की क्या जरूरत हो गई। देवताओं को आशा था, वो लोग सोच रहे थे कि यदि ये हम लोग स्थापित करते हैं कि आपके खिलाफ में है, आपका भी विद्रोही आपका पद लेना चाहता है, तो थोड़ा ब्रह्मा जी हम लोगों के फेवर में हो जाएंगे। और कितनी बुरी वासना थी, हिरण्यकश्यपु का विचार था कि हम ब्रह्मा का पद लेंगे। अरे कोई पूछेगा कि ब्रह्मा का पद कैसे लेगो, वो सबसे बड़ा पद है और उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। सतजन्म भी पुमान, स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान विरिंचताम आयति। सौ जन्म तक निष्ठा पूर्वक वर्णाश्रम का पालन करेंगे तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। हिरण्यकश्यपु कहता है कि अच्छा काल का अंत नहीं है ना, और आत्मा भी अमर है ना, जन्म होता रहता है ना, एक जन्म में नहीं साध पाऊंगा तो अनेक जन्म में तपस्या करूंगा, लेकिन पद वह लेना है। वे पद लेकर के क्या करोगे? तो अपना मैनिफेस्टो घोषित किया कि अन्यथा कर तुम, ये जैसा स्थापना है तो इसको बदल दूंगा। इस समय स्थापना है कि जो तपस्या करता है दान देता है तो स्वर्ग में जाता है। तो है कि ना, यह नियम ठीक नहीं है, हम पद प्राप्त कर जाए, अभी जो तपस्या कर रहा है कष्ट भोग रहा है, तो अभी कष्ट भोग रहा है तो आगे क्यों सुख भोगेगा? उसको आगे भी सुख, और अभी जब पैसा दूसरे को दे ही रहा है, अपने हाथ से हटा रहा है, तो आगे भी उसको दरिद्र। अभी तो सिद्धांत है कि दान देते हैं तो उसे समृद्धि आती है। ये सब है विषय सप्तम स्कंद के दूसरे तीसरे अध्याय में सब हो चुका है। तो अशुभ वासना आदेश दिया, खुद भी वो प्रयास था कि दुनिया को तंग करना, लेकिन ये अशुभ वासना के पीछे कारण क्या है? महताम कोप। हिरण्यकश्यपु तो पहले तो वैकुंठ में था, भगवान की सेवा में था, लेकिन सनकादियों का क्रोप हो गया, वे उस पर रंज हो गए। तो सनकादि रंज हुए, उसका प्रभाव हिरण्यकश्यपु के हृदय पर आ गया। वैकुंठ में निवास कर रहा था, सबसे अच्छा जगह, लेकिन वैष्णवों के कोप का प्रभाव आया कि उसके हृदय में बुरी वासना का उदय होने लगा। और प्रहलाद महाराज के वासना पर विचार कीजिए कि अकेले वे मुक्त होना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा है कि सबको मुक्त करने के बाद मुक्त होंगे, हम अकेले नहीं मुक्त होना चाहते। और जो अपना पिता कितना अत्याचार किया, सीधे जान से मारना चाहता था, उसके भी सदगति की चिंता कर रहे। और इसके पीछे क्या कारण है? कि नारद जी का अनुग्रह। वो हृदय हमारा है, हमारे हृदय में वासना का उदय हो रहा, लेकिन कंट्रोल कहाँ से है? वैष्णवों के अनुग्रह और कोप से। यदि वैष्णव हमसे कुपित हैं तो अशुभ वासना का उदय होगा, और वैष्णव संतुष्ट हैं, उनका अनुग्रह है, तो शुभ वासना का उदय होगा। और एक मिश्र वासना, और केवल वैष्णवों के अनुग्रह और कोप का ही प्रभाव नहीं आता, अपने कर्म का भी प्रभाव आता है। ये कर्म का सिद्धांत है कि जैसा कर्म करेंगे तो उसकी प्रवृत्ति और बढ़ते जाती है हृदय में। कोई भी भोग भोग रहे हैं तो उसका संस्कार हृदय में जमता जाता है और उस संस्कार के चलते हृदय में वासना का उदय होता है। तो एक मोटा मोटी विभाजन करें तो श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का विषय है उति। उति के तीन भेद किए गए, अशुभ, शुभ और मिश्र। और इसका निरूपण श्रीमद् भाग इस स्कंद के पांच पांच अध्याय में किया गया है। तो अभी जो 11वां अध्याय प्रारंभ हुआ है और इसमें मिश्र वासना का निरूपण किया गया है। यह अध्याय प्रारंभ होता है महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न से। सप्तम स्कंध के श्रोता हैं युधिष्ठिर महाराज और वक्ता हैं नारद जी। अब इसी बात को सुखदेव गोस्वामी सुनाए हैं महाराज परीक्षित को और उसी बात को सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को सुनाए हैं। लेकिन मूलतः सप्तम स्कंद के श्रोता हैं युधिष्ठिर महाराज और वे नारद जी से प्रश्न किए हैं। प्रश्न का अवसर आ गया राजसूय सभा में शिशुपाल के मुक्ति को देख करके महाराज युधिष्ठिर प्रश्न कर दे कि हमको तो बड़ा संशय हो रहा कि प्रारंभ से गाली दे रहा था और एकदम सबके देखते देखते और भगवान में प्रवेश कर गए, ये तो बहुत भारी आश्चर्य है। और नारद जी इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और इसी क्रम में प्रहलाद महाराज की कथा को बोले। अब कथा के सुनने के बाद अब युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न कर रहे। प्रश्न है, भगवन श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचार युतम यत् पुमान विन्दते परम। एक सनातन धर्म के विषय में सुनना चाहते हैं जो वर्णाश्रम धर्म से युक्त है। हम वर्णाश्रम धर्म के विषय में सुनना चाहते हैं। भाई वर्णाश्रम धर्म के विषय में आपकी क्यों रुचि है? तो उसका कारण देते रहे हैं कि पुमान बिंदते परम, जो वर्ण और आश्रम का पालन करता है तो परम को प्राप्त करता है। भाई परम क्या है? मैंने कर्म से जो श्रेष्ठ है वो परम हुआ। ज्ञान और भक्ति तीन चीज है ना, एक तो कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो वर्णाश्रम तो कर्म है, कर्म करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव होता है कि चित्त शुद्ध हो जाता है। और परम, अब इसे जो श्रेष्ठ है वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं या भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये परम मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये परम मतलब भगवान को प्राप्त करते हैं। अर्जुन क्षत्रिय थे और युद्ध भूमि में गए थे, लड़ने के लिए गए थे और युद्ध से विरत होने लगे। भगवान कहे कि ना ना ये ठीक नहीं है। अर्जुन तर्क दे रहे थे, अरे इसमें बड़ा मार काट है, हिंसा है, लेकिन भगवान उनको समझाए कि इसी से चित्त शुद्ध होगा। जैसे कोई ब्राह्मण है वो यज्ञ करता है और यज्ञ में भी किसी किसी यज्ञ में हिंसा किया जाता है, पशु की बलि दी जाती है, लेकिन फिर भी वो कर्म पवित्र है। और उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए युद्ध में मारना या मरना ये अपवित्र नहीं है, इसी से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ब्राह्मण को यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, तो ऐसे क्षत्रिय को युद्ध करने से ही, मार काट करने से, गोली चलाने से ही स्वर्ग मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रोसेस है। और भगवान समझाए कि नहीं, आपको युद्ध करना है। ये क्यों युद्ध करने की आवश्यकता है? भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि एक अवस्था है कि वहां कर्म करे न करे कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस अवस्था की चेतना को प्राप्त करना होगा। जब तक हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त किए हैं, तब तक अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। कर्म करते करते हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और ज्ञान के स्तर पर चले जाएंगे, भक्ति के स्तर पर चले गए, तो कर्म करे या न करे कोई अंतर नहीं है। कर्म करने से भी कोई दोष नहीं है, नहीं कर्म और न करने से भी कोई दोष नहीं है। तो कुछ कुछ सिद्धांत है। वर्णाश्रम एक बहुत विवाद का विषय है, वो खास करके जो कोर्स करते हैं भक्ति शास्त्री, वो भक्ति से इसका क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ तो स्पष्ट हम लोग सुन रहे हैं महाराज युधिष्ठिर की उक्ति है कि यत् पुमान बिंदते परम। अब वर्णाश्रम का आचरण करेंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, तो परम मतलब मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे या भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तब वर्णाश्रम ही साधन है ना, बिना भक्ति के कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। ये वर्णाश्रम श्रीणी का काम करता है। फिर प्रभुपाद जी लिखे हैं कि फुटिंग स्टोन, कोई भी ऊंचा स्थान है तो अब कुछ लोग सीधे नहीं चढ़ सकते, कुछ लोग चढ़ सकते हैं। कोई कोई मंच है तो कुछ लोगों को सीढ़ी की जरूरत है और कुछ लोग डायरेक्ट चढ़ जाएंगे। तो उसी तरह वर्णाश्रम केवल सीढ़ी का काम करता है। जो डायरेक्ट भक्ति के स्तर पर आ गए हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, वे वर्णाश्रम का पालन करे न करे इससे कोई अंतर नहीं है। तो वर्णाश्रम के विषय में सिद्धांत समझ लेना चाहिए। लेकिन अब कठिनाई क्या है कि अब प्रश्न लोग कर देंगे कि जब भक्ति से इसका संबंध नहीं है तो क्यों इसको थोपा जाता है, क्यों डालते हैं? उसका कारण है कि सबकी यह चेतना नहीं है कि सब कुछ त्याग करके भक्ति ही करेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम भोग भी करें और हमारा आध्यात्मिक प्रगति भी हो, कि भोग से संतुष्ट नहीं है। वे अब जो रूड भोग है, स्पर्श इंद्रिय का भोग है, उसका त्याग नहीं कर सकते। अब त्याग नहीं करेंगे और ज्ञान मार्ग को स्वीकार कीजिए या भक्ति मार्ग को स्वीकार कीजिए और मन से विषय का ही चिंतन करते रहिए, तो यह तो बहुत बुरा है ना। और इसी से एक बैलेंस्ड व्यवस्था बनाई गई, संतुलित व्यवस्था बनाई गई। वर्णाश्रम ऐसी व्यवस्था है कि भोग का जीवन व्यतीत करते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते, और इसलिए इसका बहुत महत्व है। और आप सर्वे कीजिए तो अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे जो भोग की वासना का त्याग नहीं किए हैं। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता है। यहाँ महाराज युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न के पीछे एक कारण दे रहे हैं कि यत् पुमान बिंदते परम। ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, भक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, ये भगवान को भी प्राप्त कर जाता है। तो एक क्रम है और इसका विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। भक्ति वर्णाश्रम रहते हुए भी प्राप्त करेंगे और इससे बाहर के लोग भी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति किसी के अधीन नहीं है। जैसे भगवान कहीं अवतार लेना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, तो उसी प्रकार भक्ति जहां उदित होना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो जो हो, यहां वर्णाश्रम के विषय में प्रश्न है। अब नारद जी उत्तर देना प्रारंभ किए है और एक ठीक है, हम वर्ण और आश्रम के धर्म के निरूपण करूंगा, लेकिन पहले जो कॉमन चीज है सबके लिए आवश्यक है उसको सुन लो। तो कल आप लोग सुने होंगे 30 धर्म का निरूपण किया गया। तो यह किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम के लिए आवश्यक है, ये वर्ण आश्रम के लिए नहीं। ये कोई भी मनुष्य है तो उसको इन 30 धर्म को अपनाना ही होगा। और हम केवल उसको एक बार बोल देते, सत्यम, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, दया, तपस्या, शौच, सहनशीलता और आत्मदर्शन, सौम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, ये सबके लिए है, किसी एक वर्ण या आश्रम के लिए नहीं है। ये भगवान की कथा कीर्तन सबके लिए है, किसी एक वर्ण और आश्रम के लिए नहीं है। वो पहले यह स्थापित किए कि चाहे कोई व्यक्ति किसी वर्ण का हो, वो कुछ चीज उसको करना ही है। यदि उसका आचरण नहीं करता है तो वो मनुष्य माना ही नहीं जाएगा। वर्ण आश्रम तो मनुष्य समाज में है ना, वो मनुष्य का स्तर प्राप्त करेंगे इसके बाद ही वर्ण और आश्रम का आचरण कर सकते। तो ये मनुष्य के लेवल को प्राप्त करने के लिए 30 चीजों का आचरण करना आवश्यक है। अब जो वर्णाश्रम की बात बोलना है नारद जी को, लेकिन उसके पहले वे स्थापित कर रहे हैं कि वर्ण है, 4 वर्ण है, लेकिन उसमें भेद किया जाता है। एक को द्विज कहा जाता है और दूसरे द्विज से भिन्न है, शूद्र है, अंत्यज है, जो कहा जाए। तो पहले तो मनुष्य के स्टैंडर्ड है और इसके बाद द्विज के स्टैंडर्ड को बतला रहे हैं। और कुछ लोग द्विज से भिन्न है और द्विज में भी अब 2 भेद कहा किया जाता है, एक तो ओरिजिनल द्विज और एक फर्जी या डुप्लीकेट, उनको द्विज बंधु कहा जाता है। तो इस श्लोक में द्विज की स्थापना कर रहे हैं कि द्विज किसको कहेंगे। तो कह रहे हैं संस्कारा यत्र अविच्छिन्ना सद्विजो अज जगाद यम, के जिस परिवार में संस्कार अविच्छिन्न है, संस्कार कभी भंग नहीं हुआ, वो परंपरा से संस्कार चल रहा है, या दूसरा अर्थ किया गया है कि संस्कार अनेक हैं, कहीं कहीं 64 संस्कार की बात है, कहीं कहीं 16 संस्कार बहुत प्रसिद्ध है। वो कह रहे कि ये संस्कार जब अविच्छिन्न है, ये बाधित नहीं हुए हैं, तो उसी को द्विज कहा जाएगा। अब संस्कार जिसका बाधित हो गया है तो उसको द्विज नहीं कहा जाएगा, द्विज बंधु कह सकते, उसको द्विज नहीं कहा जाएगा। और कोई कह सकता है तो संस्कार है, वो किसी का चला हो तो उसको द्विज कहेंगे, कहेंगे ना अजो जगा दियम, ब्रह्मा जी जैसा रिकमेंडेशन किए हैं उस प्रिंसिपल के अनुसार जहां संस्कार, जिस परिवार में संस्कार अविच्छिन्न है, वो खंडित नहीं हुआ है, तो उसको कहा जाएगा द्विज। अब द्विज और इस खंडित हो गया संस्कार, तब क्या कहा जाएगा? द्विज बंधु। तो द्विज के लिए तीन कर्म का विधान कर रहे हैं, इज्ज्या, अध्ययन, दानानी, विहितानी द्विजन्मना। द्विज के लिए तीन कर्म कौन कौन? इज्ज्या, इज्ज्या का अर्थ है पूजा, यज्ञ करना। अध्ययन, अध्ययन का अर्थ है वेद का पाठ करना। और दानानी, दान देना या दान लेना। ये दान तीन कर्म है। और जन्म कर्म वदाता नाम क्रिया शास्त्र में चोदिता, ये तीन कर्म है, यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना और दान। वो कह रहे हैं कि यह केवल द्विजों का अधिकार, इसमें केवल द्विजों का अधिकार, जो द्विज से भिन्न है उनका अधिकार नहीं है। और द्विज के लिए आवश्यक है कि संस्कार अविच्छिन्न होना चाहिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए। खास करके जिसका गर्भाधान संस्कार ठीक से हुआ है तो उसी को द्विज कहा जाता है। और जन्म कर्मा वदाता नाम क्रियाशास्त्र में चोदिता, तीन कर्म है, यज्ञ, वेदाध्ययन और दान। लेकिन ये उसी के लिए है जिसका जन्म और कर्म अवदात है, उसके जन्म में कोई दोष नहीं है, उसके कर्म में कोई दोष नहीं है, दोनों तरह से वह विमल है, तो उसका इन कर्म में अधिकार है। और एक चीज और प्रभावित करता है, कह रहे हैं क्रिया चाश्रम चोदिता, यज्ञ इत्यादि है तो आश्रम से भी प्रभावित होता है, जिस आश्रम का जैसा विधान है तो उसके अनुसार द्विज के इन कर्तव्यों का पालन करना होता है। जैसे कोई सन्यासी है और सन्यासी में भी एक ग्रुप है जिनको निरग्नि सन्यासी कहते हैं। गीता में आप सुनते हैं न निरग्निर न चाक्रिय, स निरग्निर न चाक्रिय, कुछ लोग कोई क्रिया ही नहीं करते हैं, कर्म का त्याग करते हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सन्यासी हैं कि आग का प्रयोग का ही त्याग कर देते हैं, आग से कोई कनेक्शन नहीं रखते। तो जब वो निरग्नि सन्यासी हैं तो उनके लिए अब हवन इत्यादि का तो विधान नहीं रहेगा। तो द्विज हैं लेकिन निरग्नि सन्यासी हैं तो हवन इत्यादि उनके लिए विहित नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो द्विज हैं उनके लिए तीन कर्म कौन कौन? इज्ज्या, अध्ययन और दान। लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा आश्रम के अनुसार। अब जिस आश्रम के लिए जैसा विहित है उसके अनुसार करना होगा। जैसे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसका मुख्य फोकस होगा यज्ञ पर और वेदाध्ययन पर, विद्याध्ययन उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो द्विजों का तीन कर्तव्य बतला रहे हैं, लेकिन वह आश्रम के अनुसार प्रभावित होता है। जैसा जिसका आश्रम है तो उसके अनुसार इन कर्मों का संपादन करेगा। तो अभी सामान्य रूप से द्विज के कर्म को बतलाए। अब द्विज तो तीन वर्ण के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो फिर आगे के श्लोकों में ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है और वैश्य का क्या कर्तव्य है और वर्णाश्रम है, तो द्विज से जो भिन्न है उनके भी कर्तव्य का निरूपण किया गया। तो ये सब आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। इस श्लोक में द्विज की परिभाषा और उसका कर्म, और कर्म को प्रभावित करने वाला और क्या कारक है इसका उल्लेख किया गया है। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, क्या क्या प्रश्न है?
तो शुभ अशुभ और मिश्रित बोला तो मेरा भाव यहाँ पर ग्रहण करता है कि शुभ अशुभ ये दोनों प्रकृति के गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो शुभ अशुभ और इन दोनों से अलग भी तो हो सकता है, भक्ति वासना भक्ति की भी तो हो सकती है। शुभ अशुभ और इन दोनों इन गुणों से अलग हट करके वासना,
आपके मन में जो विचार आ रहा है कहां से आ रहा है?
आपने बोला कि शुभ अशुभ च,
तो हम तो चक्रवर्ती पाद जी के अनुसार बोल रहे, आप कहां से बोल रहे हैं वो बतलाइए।
मैं इस बात को, ये भक्ति की भी तो वासना हो सकती है ना,
भक्ति शुभ नहीं है,
शुभ से शुभ गुणों के अंतर्गत आता है, शुभ गुणों से हटकर के भक्ति तो स्वतंत्र है, गुणों के अंतर्गत नहीं है ना।
शुभ हमेशा गुणों के अंदर भी होता है, ये कहां से स्थापित कर दिए कि शुभ गुणों के अंदर ही होगा?
तो मैं जानना चाहता हूँ।
जानना तो नहीं चाहते हैं आप, तो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं ना
जी, कैसे
आप तो बांध रहे हैं ना
जिज्ञासा है, जिज्ञासा
ना, जिज्ञासा नहीं है, आपकी स्थापना है और स्थापना के लिए आधार लेकर के स्थापित कीजिए, स्थापना करना है तो उसके लिए आधार लेना होगा, निराधार स्थापना नहीं करना चाहिए, ये हमारा सलाह। हरे कृष्ण।
तो जैसे वर्णाश्रम धर्म में भक्ति नहीं कर रहे महाराज जी, जैसे भोग नहीं लगा रहे हैं, वो तो उनके वर्णाश्रम धर्म में नहीं है ना मुख्य, अगर भोग लगा रहे फिर तो भक्ति में आ जाएगा, तो वर्णाश्रम धर्म में जैसे फिर वो स्वर्ग जाएंगे ना महाराज जी, आपने बताया
तो कथा सुनना चाहिए ना, क्लास में बैठने पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए।
नहीं सुनना है महाराज,
ये कहा गया ना कि यत यत उमान बिंदते पर, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से व्यक्ति परम को प्राप्त करता है, परम का अर्थ में ज्ञान किया, भक्ति किया, मुक्ति
नहीं,
किया
नहीं, स्वर्ग किया आपने, स्वर्ग की कहा ना, स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
और यह मैं नहीं कहा कि परम का अर्थ, मैं यह तो दूसरे क्रम में कहा कि जो वर्णाश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर से अब रिकॉर्डिंग ये बात सही है, लेकिन मैं कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है, उसको थोड़ा सा फिर से एक बार को कर लीजिए। अब इसको मान लीजिए कि कहा थी, तो यह बात भी कहा ना कि वर्णाश्रम से परम की प्राप्ति होती है, परम का क्या अर्थ है, जो कर्म से भिन्न है ऊपर उसको परम ज्ञान या भक्ति, यह परम का अर्थ मुक्ति, यह परम का अर्थ है भगवान। तो वर्णाश्रम तो इसीलिए बनाया ही गया है कि धीरे धीरे आदमी भक्ति को प्राप्त कर ले।
महाराज जी मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे ना वर्णाश्रम धर्म में जैसे हम भक्ति के नियमों का तो जो पालन नहीं करते हैं ना, तो भोग भी नहीं लगाते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे भगवद गीता में, जो भोग लगाए भी ना मुझे खाते हैं वो पाप खाते हैं, तो पाप खाएंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन है।
ये किस ग्रंथ में लिखा गया है कि वर्णाश्रम में भोग लगाने का विधान नहीं है?
विभक्ति हो गया ना महाराज जी, वो
वर्णाश्रम भक्ति करने के लिए ही है ना
जी महाराज जी, ठीक है,
वर्णाश्रम भी भक्ति का ही स्तर है, लेकिन सबसे नीचे के पैदान पर आप राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु की वार्ता सुनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि अश्लोक बोलो साध्य के निर्णय के विषय में। तो प्रथम अश्लोक यही बोले कि जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के से अपने वर्ण और आश्रम से भगवान की पूजा कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो वर्ण आश्रम भगवान की प्रसन्नता का एक साधन है और भक्ति ही है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। ये भक्ति के प्राप्ति के लिए वर्ण आश्रम का विधान किया गया, इसमें भोग लगाना है। भोग लगाते लगाते फिर अभी तो भोग लगाएगा जो अपने लिए भोजन बनाया है परिवार के लिए, उसको भोग लगाएगा और धीरे धीरे भगवान के ही बनाकर भगवान के लिए ही बनाएगा भोग लगाएगा, तो उच्चतर भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए सब साधन है। आप ये बात नहीं सुने कि कोई कोई डायरेक्ट भक्ति पर आ जाते हैं और कोई कोई क्रम से, तो सीढ़ी जैसा एक सीढ़ी है, इसे धीरे धीरे भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं।
जी महाराज जी, महाराज जी एक और बीच में इसमें ही वो आ रहे हैं कि मैं ना महाराज जी एक लेक्चर सुन रही थी तो उसमें कह रहे थे जैसे कर्म तीन तरीके के होते हैं, कर्म कर्म और विकर्म। और हम जैसे विकर्म तो बुरे कर्म होते हैं जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं, कर्म जो हो गए वो हमें स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, और अकर्म भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति है तो जो हम कर्म कर रहे हैं तो जैसे वो हमें स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, है ना। तो उसमें जैसे हम भोग है, जैसे भोजन है, अगर हम प्याज लहसुन वगैरह डाल के बनाते हैं तो कर्म हो गया, बुरा कर्म हो गया, या नॉन वेज हो गया तो ये भी कर्म में आ गया, और जो सात्विक भोजन हो गया वो कर्म में आ गया अगर हम खाते हैं, और भगवान को भोग लगा आ गया तो वो भोग प्रसादम है, वो हमारे अकर्म में आ गया। तो जो भोग है, जो जो सात्विक है वो हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, ठीक है महाराज जी यहाँ तक। तो महाराज जी ये कह रहे थे कि लेकिन जो सात्विक भोजन है वो भगवान को अर्पण तो नहीं किया गया, फिर हमें स्वर्ग पहुँचाएगा वो महाराज जी, क्योंकि ना भगवान गीता में कहते हैं भोग लगाए भी ना मुझे खाते हैं तो वो पाप खाते हैं, पाप खाएंगे स्वर्ग कैसे जाएंगे महाराज जी, ये क्वेश्चन आ रहा मन में।
ठीक है, आप जो सत्व से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ये सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन एक सिद्धांत और जानना चाहिए कि जहाँ भक्ति का टच नहीं है, जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तब तक कोई कर्म फल कुछ भी नहीं देगा। श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, तपस्विनो ज्ञान पर यशस्विनो, जब तक हम भक्ति का संसर्ग नहीं करेंगे, मिश्रण नहीं करेंगे, तो सात्विक कर्म भले ही कुछ फल नहीं देगा। इसको अजागलस्त न्याय से समझाया गया है, ये कर्म है या ज्ञान है, साधन जरूर बतलाए गए हैं, लेकिन थोड़ा भक्ति का मिश्रण होने से ही वे अपने फल को देते हैं। एक भक्ति को एकदम माइनस कर दीजिए तो एक फल नहीं दे पाएंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कितना हो कोई सात्विक भोजन करे, जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेगा तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा,
फिर वो विकर्म में ही आएगा महाराज जी, फिर विकर्म में काउंट किया जाएगा ये।
देखिए विकर्म तो नहीं है लेकिन कर्म होने से क्या होगा, कर्म का फल भगवान के अधीन है ना, कर्म जड़ है और एक तरह से विकर्म भी है, क्या वो सात्विक है, सब चीज ग्रहण कर रहे हो भगवान से और भगवान को अर्पित नहीं कर रहे तो चोर हो ना।
हाँ जी महाराज,
तो चोर को स्वर्ग दे दिया जाएगा।
नहीं वही क्वेश्चन है महाराज जी, यही कंफ्यूजन हो रहा था महाराज जी।
देखिए चैतन्य चरितामृत में इसको अजाग्रस्त न्याय कहा गया है। बकरी देखिए हो, बकरी के नीचे दो छेमी होता है, उससे दूध निकलता है और कभी कभी उसके गर्दन पर भी छेमी लटकता है, उसको अजाग्रस्त कहते हैं। तो गर्दन पर जो छेमी लटक गया देखने में तो एकदम वैसा ही लगता है लेकिन उससे दूध नहीं निकल सकता। तो उसी तरह ज्ञान और कर्म को साधन कहा गया है, लेकिन जब तक भक्ति का मिश्रण नहीं होगा, भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, तब तक उसे कोई फल नहीं मिलेगा। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव परी मजे,
नरक जाएंगे।
हाँ, वर्णाश्रम की ऐसी व्यवस्था है कि व्यक्ति अर्पित करेगा, यही ट्रेनिंग दिया जाता है वर्णाश्रम में। यज्ञ के लिए सब कर रहा है, यज्ञ संपादित करना होता है ना, यज्ञ का मतलब है भगवान को अर्पित करना।
जी महाराज जी,
ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।